नमस्कार श्रोताओं, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से यूहन्ना रचित सुसमाचार का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों और आत्मिक ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। पाप की लहरों से घिरा हुआ था, न कोई मंजिल और न किनारा। वो आया बनकर मेरा सहारा, वो आया बनकर मेरा सहारा। पाप की लहरों से मुझे उबारा, पाप की लहरों से मुझे उबारा। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। जीवन था मेरा पाप की खाई, सब दूर निराशा रहे अंधेरी। क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, क्रूस की ओर जब दृष्टि उठाई, किरण जीवन की हृदय में आई, किरण जीवन की हृदय में आई। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान, आए विपत्ति चाहे तूफान, उसमें मैं पाता शरण स्थान, उसमें मैं पाता शरण स्थान।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं। और आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। इससे पहले कि हम अपने अध्ययन को आरंभ करें, आइए हम सब परमेश्वर की निकटता में आए और उससे आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबको दिया है ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी आपसे विनती है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ की परिपूर्णता दे ताकि जब हम आपके वचन को सुनते हैं तो आपके इस जीवित वचन के द्वारा से हमारे हृदयों में कार्य होने पाए, आपके वचन हमारे हृदयों से बोलने और बातचीत करने पाए, ताकि प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा हम आप में बलवंत किए जाएं। हमारी विनती है उन प्रिय भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनते हैं और इस समय दुखी हैं, निराश हैं, चिंता और परेशानियों में हैं, उनके अलग अलग समस्याएं हैं जिसे आप भली भांति जानते हैं। पिताजी, आप उन सब की सहायता करें, उन्हें आशीषित करें ताकि आज के इस वचन के द्वारा इस बात को भली भांति जान सके कि आप उनसे प्रेम करते हैं और आप उनकी चिंता करते हैं। प्यारे प्रभु, इस वक्त फिर से एक बार हम सबको और इस समय को आपके हाथ में सौंप देते हैं। आप हमारे साथ हो और हमारे सहायक हो, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, हम पिछले अध्ययन में देख चुके हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु के साथ अन्याय हुआ। उसे कोड़े मारे गए, उनका अपमान किया गया और उसे क्रूस पर ठोका गया, और इससे पूर्व के सैनिक उसकी टांगे तोड़ते वह मर चुका था, अतः उसकी हड्डियां नहीं तोड़ी गई। अरमतिया का यीशु भी यीशु का अनुयायी था, उसने पिलातुस से अनुमति लेकर यीशु के शव को कब्र में रखवा दिया। हम पहला कुरिन्थियों के पत्री 15 अध्याय उसके 3-4 पद में पढ़ते हैं, जिसे पौलुस लिखता है, वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा और कैफा को और तब 12 को दिखाई दिया। मेरे प्रिय मित्रों, यह ऐतिहासिक सत्य है और हमारा उद्धार इसी से संबंधित है। क्या आप मसीह में विश्वास करते हैं? क्या आपको विश्वास है कि क्रूस पर जान देकर उसने आपके लिए कुछ किया है? क्या आप विश्वास करते हैं कि वह आपके लिए आपके स्थान पर आपके मोक्ष अर्थात उद्धार के निमित्त मारा गया? हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 38-40 पद में पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इन बातों के बाद अरमतिया के यूसुफ ने, जो यीशु का चेला था परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था, पिलातुस से विनती की कि मैं यीशु के लोथ को ले जाऊं, और पिलातुस ने उसकी विनती सुनी और वह आकर उसकी लोथ ले गया। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलुआ ले आया। तब उन्होंने यीशु की लोथ को लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। मेरे मित्रों, यीशु के शव की अंतिम क्रिया करने वाले ये दोनों व्यक्ति गणमान्य थे अर्थात प्रचलित थे। यूसुफ एक धनवान मनुष्य था और निकोदिमुस यहूदियों का अधिकारी, दोनों ही गुप्त में उसके अनुयायी थे परंतु अब सामने आ गए। मेरे प्रिय मित्रों, पुराने नियम में और नए नियम में भी विश्वासियों का मानना था कि मृतकों का पुनरुत्थान होगा जो अविनाशी देह में होगा। अब क्योंकि इसराइल मिस्र में था, अतः उन्होंने मिस्रियों से शव को लेप करने की विधि सीख ली थी। शव के अभ्यंजन में शरीर के भार का आधा गंधरस और एलुआ लगाना होता था, तब मलमल के कपड़े की पट्टियों से शव को लपेटा जाता था। पहले उंगलियां लपेटी जाती थी, फिर हाथ, फिर भुजाएं, तब पूरी देह। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 41-42 पद में पढ़ते हैं, उस स्थान पर जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी, और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। सो यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा, क्योंकि वह कब्र निकट थी। मेरे मित्रों, हम देखते हैं कि उन्हें यह काम शीघ्र ही पूरा करना था, क्योंकि संध्या निकट थी और फसह की तैयारी आरंभ होने वाली थी। यही कारण था कि उनकी अभियंजन क्रिया पूरी नहीं हुई थी। पर्व की समाप्ति पर स्त्रियां सुबह सुबह सुगंधित पदार्थ लेकर कब्र पर पहुंची थी। वे चिंतित थी कि कब्र पर रखा गया पत्थर वे कैसे हटाएंगे, कि उन्होंने देखा कि पत्थर हटा हुआ है और यीशु कब्र में नहीं था। मेरे प्रियो, मसीही विश्वास का मूल ही यीशु का पुनरुत्थान है, जिसे केवल ईस्टर के पर्व में ही मनाया जाता है। परंतु नए नियम के युग में पेंतिकोस्त के प्रचार से ही संपूर्ण प्रचार में यीशु का पुनरुत्थान मुख्य विषय रहा है। अब हम देखते हैं यीशु का पुनरुत्थान। यहाँ पर अध्याय 19 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन को अध्याय 20 से जारी रखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके एक पद में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। मेरे मित्रों, सप्ताह का पहला दिन रविवार था। मरियम मगदलिनी यीशु की कब्र पर गई। शनिवार को ही आराधना और विश्राम दिवस मनाने वालों का एक प्रश्न है, सप्ताह के दिन का अंत कब होता है? सप्ताह का दिन का अंत तब हुआ जब यीशु मृतकों में से जी उठा। सप्ताह के दिन वह कब्र में विश्राम कर रहा था और रविवार को वह फिर से जी उठा। सप्ताह का दिन पुरानी व्यवस्था में था और परमेश्वर ने उस दिन सृजन कार्य से विश्राम पाया था। हम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हैं और यूहन्ना रविवार के दिन यीशु के पुनरुत्थान पर विशेष बल देता है। पिंतीकोस्त का दिन भी रविवार ही था। हमें इस प्रभात की घटनाओं पर क्रमवार तरीके से ध्यान देना उचित है। लुका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 55 और 24 अध्याय उसके 9 पद में पढ़ते हैं और इसके साथ यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 1 और 2 पद में भी हम पढ़ते हैं, मरियम मगदलिनी, याकूब की माता मरियम और सलोमी रविवार सुबह तड़के ही कब्र पर आती है। अन्य स्त्रियां उनके पीछे थी जिनके पास सुगंधित द्रव्य थे। उन्होंने देखा कि कब्र से पत्थर हटाया गया है। मरियम मगदलिनी शिष्यों को सूचित करने जाती है और याकूब और यूसुफ की माता मरियम कब्र के पास आती है और स्वर्गदूतों को वहां पर बैठे हुए पाती है। वह लौटकर सुगंधित द्रव्यों के साथ आ रही है, अन्य स्त्रियों को भी सूचित करती है। इसी बीच मरियम मगदलिनी से समाचार सुनकर पत्रस और यूहन्ना आकर उससे कहते हैं और कब्र को खाली देख लौट जाते हैं। यूहन्ना 20 उसके 11 से 18 पद में भी हम पाते हैं, मरियम मगदलिनी रोती हुई फिर से कब्र पर आती है और वहां दो स्वर्गदूतों को देखती है। फिर यीशु से उसका सामना होता है और यीशु उसे शिष्यों के लिए संदेश देकर भेजता है। हम लुका रचित सुसमाचार 24 अध्याय उसके 4 और 5 पद, मार्कुस 16 उसके 5 में भी पढ़ते हैं, याकूब और यूसुफ की माता मरियम अब अन्य स्त्रियों के साथ कब्र पर पहुंचती हैं। स्वर्गदूत उन्हें यीशु के जी उठने का संदेश देता है। वे शिष्यों के पास जा रही हैं कि यीशु उन्हें दर्शन दे। मत्ती 28 उसके 8 से 10 पद में इसे पढ़ते हैं, मरियम मगदलिनी वह मरियम नहीं है जिसने यीशु के पांव आंसुओं से धोए थे। यह मरियम एक प्रतिष्ठित महिला थी जिसमें से यीशु ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। वह चंगाई के कारण यीशु की आभारी एवं श्रद्धालु थी। वह पत्रस और यूहन्ना को कब्र खाली होने की संदेश देने गई। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, तब वह दौड़ी और शमोन पत्रस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहां रख दिया है। प्रिय मित्रों, चेला जिससे यीशु प्रेम रखता था वह यूहन्ना था। यूहन्ना अपना परिचय ऐसे ही देता है, आप भी अपने लिए ऐसा कह सकते हैं। यहूदा पद 21 में कहता है, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखें क्योंकि वह आपसे प्रेम रखता है, आप उसे प्रेम करने से रोक नहीं सकते हैं। यूहन्ना का स्थान लेना आपके लिए अच्छा होगा। मेरे मित्रों, यहाँ कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्यों ने पत्रस को इनकार करने के कारण अलग कर दिया था, परंतु यूहन्ना सच में प्रेम का प्रेरित बना और इस समय जब पत्रस को ढाड़स बंधवाने के लिए किसी की आवश्यकता थी तब उसने उसे सहारा दिया। मरियम को यीशु के फिर से जी उठने की आशा नहीं थी। वह सोच रहे थे कि यहूदियों ने उसका शव वहां से निकाल लिया है। आगे चलकर यहूदी शिष्यों को दोष देंगे कि उन्होंने यीशु का शव चुरा लिया है। उस दिन यीशु के शव के बदले यहूदी धर्मगुरु कुछ भी दे सकते थे। हम यूहन्ना 20 अध्याय उसके 3 और 4 पद में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तब पत्रस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले और दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पत्रस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। ध्यान दीजिए कि पत्रस और यूहन्ना भी यीशु के जी उठने की आशा में नहीं थे। उनके विचार में मरियम प्रकाश की कमी के कारण ठीक से देख नहीं पाई थी, या तो वह किसी और कब्र पर चली गई थी। यदि उन्हें विश्वास होता कि यीशु अपने कहने के अनुसार फिर जी उठेगा तो वे उसे मृतकों में खोजने नहीं जाते। यूहन्ना भागकर पहले पहुंचा, इससे स्पष्ट होता है कि वह अभी युवक था। मेरे विचार में पत्रस और यूहन्ना की आयु में बड़ा अंतर था। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 5 पद में पढ़ते हैं, और झुककर कपड़े पड़े देखे तो भी वह भीतर न गया। किसी ने उचित ही कहा है कि बड़ा द्वार भी छोटा कब्जों पर झूलता है। यूहन्ना ने कफन देखा और विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। हम आगे यूहन्ना 20 उसके 6 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब शमौन पत्रस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे। पत्रस आया और सीधा कब्र में प्रवेश कर गया, वह डरता नहीं था। मित्रों, यह बड़ी विचित्र बात है कि यीशु उस चिपचिपे मरहम और सुगंधित द्रव्य और कपड़े में से कैसे निकला। यह सच ही है कि वह नाशवान को त्याग अविनाशी में बाहर आ गया। आपको स्मरण होगा कि लाजर कफन के साथ ही कब्र से बाहर आया था। लाजर का शरीर नाशवान था, अथवा फिर मर गया, परंतु यीशु का शरीर अविनाशी था। वह मृत्यु को कभी नहीं देखेगा, यह पुनरुत्थान है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और वह अंगोछा जो उसके सिर पर बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेटा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। मेरे मित्रों, यहाँ परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा एक छोटी सी परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बात प्रकट करता है कि उसने वह कपड़ा जो यीशु के सिर पर बंधा था अलग रखा देखा, और वह ज्यों का त्यों था। उसे देख मेरे विचार में यूहन्ना ने विश्वास किया कि यीशु जी उठा है। यहाँ देखने के लिए 3 अलग अलग यूनानी शब्दों का उपयोग किया गया है। पद 5 में यूहन्ना ने देखा अर्थात निरीक्षण करके स्वीकार किया। पद 6 में पत्रस ने देखा अर्थात दृष्टि डाली, और पद 8 में यूहन्ना ने देखा अर्थात जान लिया कि यीशु जी उठा है। हम यूहन्ना 20 उसके 9 और 10 पद में पढ़ते हैं, वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात न समझते थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा, तब ये चेले अपने घर लौट गए। मेरे प्रिय मित्रों, यहाँ यूहन्ना एक सच्चाई को प्रकट करता है। यीशु ने उनसे बार बार कहा था कि वह फिर से जी उठेगा, और पुराने नियम में उसके जी उठने की भविष्यवाणी भी है। नया नियम पुराने नियम की भविष्यवाणी का प्रतिबिंब है। आज भी अधिकांश जन धर्मशास्त्र को पढ़कर समझ नहीं पाते हैं। मेरे विचार में इसके 2 कारण हैं। पहला, हम जब भी वचन को पढ़ते हैं हमें एक नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है जो पवित्र आत्मा का कार्य है। दूसरा, हमें उस बाइबल अंश को समझने के लिए अन्य संदर्भों की आवश्यकता होती है कि उनका अनुभव पाएं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन की परीक्षाएं, अनुभव और कष्ट उनका अर्थ हमें समझाते हैं। उदाहरण स्वरूप, जब दाऊद कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है, तो वह अपने जीवन के अनुभव से जानता था कि चरवाहा कैसी सुधि लेता है। हम आगे देखते हैं मरियम को यीशु का दर्शन। मरियम को सबसे पहले यीशु दिखाई दिया था। स्वर्गरोहण से पूर्व यीशु ने 11 बार दर्शन दिए हैं और स्वर्गरोहण के पश्चात 3 बार दर्शन दिए। पढ़कर तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसने और भी दर्शन दिए जो लिखे नहीं गए हैं। मेरे मित्रों, यदि यह पूछें कि यीशु ने मरियम को सबसे पहले क्यों दर्शन दिया, तो वह नीति वचन 8 अध्याय उसके 17 पद को पढ़े। लिखा है, जो मुझे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। मरियम ने उसे तड़के खोजा और उसे पाया। हम यूहन्ना 20 अध्याय उसके 11 से 15 पद में पढ़ते हैं, परंतु मरियम रोते हुए कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा जहां यीशु की लोथ पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझसे कह कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। मेरे मित्रों, मरियम यीशु से बहुत प्रेम रखती थी, अतः वह रो रही थी। अभी उसे विश्वास नहीं था कि यीशु जी उठा है। वह तो यही सोच रही थी कि उसकी देह को किसी ने चुरा लिया है। उसका दुख उस पर ऐसा छा गया था कि वह यीशु को भी तुरंत पहचान नहीं पाई। निसंदेह यीशु की देह बदल गई थी, परंतु उसका रूप नहीं बदला था कि वह पहचाना नहीं जाता। हम यूहन्ना 20 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने पीछे फिरकर उसे इब्रानी में कहा, रब्बुनी, अर्थात हे गुरु। जब यीशु ने उसका नाम पुकारा तब मरियम ने यीशु की आवाज पहचान ली। यह वही आवाज थी जिससे उसने मृतकों को पुकारा था और वे पुनः जीवन में लौट आए थे। मित्रों, हमारी मृत्यु के पश्चात एक दिन वह हमें भी नाम लेकर पुकारेगा और हम लौट आएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय उसके 17 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। यीशु ने मरियम से कहा कि वह उसे न छुए, परंतु वह थोमा से कहता है कि वह उसे छू कर देखे। क्यों? उसने मरियम से कहा था कि वह अभी तक पिता के पास स्वर्ग में नहीं गया है। इसका अर्थ है कि शिष्यों को दर्शन देते समय वह पिता के पास जाकर आ गया था। मेरे विचार में यीशु ने पिता के पास जाकर अपना लहू चढ़ाया और न्याय आसन दयासन बन गया। यह लहू संपूर्ण अनंत काल वहां रहेगा कि हमारे लिए चुकाए गए मूल्य की स्मृति ठहरे। मेरे प्रियो, यीशु यहाँ एक बात स्पष्ट कर रहा है कि उसका परमेश्वर से संबंध परमेश्वर के साथ हमारे संबंधों से भिन्न है। इसलिए वह कहता है, अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर। हम प्रभु यीशु में विश्वास द्वारा परमेश्वर की संतान बनते हैं, परंतु वह त्रिएकत्व का अंग है और परमेश्वर का अनंत पुत्र है। इसका यही अंतर है कि हम विश्वास के द्वारा उसके पुत्र हैं, परंतु वह त्रिएकत्व का अंग है। मेरे प्रिय मित्रों, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिष्यों को भी उस पर विश्वास नहीं था जो भविष्यवाणी उसके ऊपर में कही गई थी, जो उसने खुद कहा था कि वह मृतकों में से जी उठेगा। परंतु जब उसने मरियम को पुकारा तो वह जान गई कि यह वही प्रभु है जिसने लाजर को जिलाया था। मेरे प्रिय मित्र, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसी ही बातें घटित होती हैं। हम परमेश्वर के बहुत करीब होते हैं, लेकिन हम उसे नहीं पहचान पाते हैं, और वह चाहता है कि हम उसे जानें, हम उसे पुकारें और उसके बारे में दूसरों को बताएं। यहाँ पर जैसा कि उसने कहा है कि मेरा पिता और तुम्हारा पिता, जी हाँ, हम जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बनते हैं और जब हम परमेश्वर की संतान बनते हैं तो वह मेरा और आपका परमेश्वर और पिता बन जाता है, जिस प्रकार से यीशु का। और इसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी निकटता में रहकर उसके उन बातों को लोगों तक पहुंचाएं कि वह आज भी जीवित है, वह आज भी मेरा और आपका उद्धार करता है और उद्धार करता है। क्या आज आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? क्या आज आप उस परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं? सवाल यह आपके लिए है कि आप क्या करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, आज मौका है कि हम प्रभु यीशु के पास आएं और उसे अपने जीवन में जगह दें, ताकि हमारे जीवन की हर एक तकलीफें जिसे प्रभु दूर करना चाहता है दूर कर सके और उसे अपने जीवन का स्वामी बना लें। आज हमारे अध्ययन का समय यहाँ पर समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने जीवन में आत्मिक आशीषों को प्राप्त किया है। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और इस वचन के प्रकाशन में अपने आप को जांचें और प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित करें। हमारे जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप वही प्रभु हैं जो हमारे पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। आज भी आप जीवित हैं और हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। आज हमारे कितने ही भाई बहन आपकी निकटता में आना चाहते हैं परंतु वे आ चुके हैं लेकिन आपको नहीं पहचान पा रहे हैं। हमारी विनती है कि आप उनकी आत्मिक आंखों को, उनके हृदय और विचारों को खोल दें ताकि वे आपको देख सकें, आपको स्वीकार कर सकें और इस वचन के प्रकाशन में अपने जीवन को डाल सकें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सब से अपने वचन के द्वारा बातचीत किया है और इस बात का प्रमाण हमें दे दिया है कि आप जीवित हैं और जो जीवित है वही उद्धार दे सकता है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। अब कोई डर नहीं और ना निराशा, यीशु ही केवल धन्य आशा। शीघ्र वो आए लेने मुझे, शीघ्र वो आए लेने मुझे, यही है दिल की अभिलाषा, यही है दिल की अभिलाषा। यीशु है मेरा मुक्ति धाम, उसमें मैं पाता पूरा विश्राम। आए विपत्ति चाहे तूफान आए विपत्ति, चाहे तूफान उसमें मैं पाता।